आपके यहाँ जमा होने को देखकर जिनको पिघल जाना चाहिए, इस तस्वुर से कि आपको इबादत से इतनी दिलचस्पी है, उसूल इल्म के लिए किस कदर कोशान हैं, आप अपने पाक इमाम को किस कदर चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कैसे शिदाई हैं और किससे दर्जे की फिदाई हैं, इन तस्वुरात से हमें पिघल जाना चाहिए और इसी तसव्वुर से अपने लिए एक कुव्वत पैदा करनी चाहिए। तो अज़ीज़ानी में जैसा कि आपने बारहा सुन लिया है, बल्कि खुद तो इस पढ़ते का मुतालिया भी हो चुका है कि इंसानों के इस दुनिया में आने का जो अजीम मकसद है वो मारिफत है, यानी खुदा की पहचान, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई मकसद है नहीं। और जितने दूसरे मकासिद हैं वो इस अजीम मकसद के तहत आ जाते हैं, चुनांचे कोई मकसद फ़र्क नहीं हो जाता। तो हाँ, उन मकासिद को दीन से मंसूब करें या उनको इंसानी मकासिद करार दें, तो हर हालत में जो नेक मकासिद हैं वो इसी सिलसिले की कड़ियों की हैसियत से हैं। यके बाद देगर ये मकासिद जो हैं तरतीब में आते हैं और इनमें से कोई मकसद हाउस नहीं होता। यानी कहना ये है कि अगरचे इंसान के इस दुनिया में आने का अजीम मकसद खुदा की शिनाख्त है, लेकिन इस बुलंद तरीन मकसद को पाने के लिए और भी मकासिद तो चाहिए, यानी और भी मकासिद हैं। जिस तरह दुनिया की मिसाल में किसी बड़े काम को अंजाम देना होता है, तो उस बड़े काम की अंजामदेही के सिलसिले में कितने दूसरे काम करने पड़ते हैं, कितने और कामों को अंजाम देना पड़ता है, कुछ तो तैयारी के तौर पर, कुछ तो रास्ते के मराहिल के तौर पर, बहुत तो सारे कामों को अंजाम देना होता है। चुनांची सच्चे दीन के अंदर जितने काम करने के लिए हैं और जितनी बातें कहने के लिए हैं, वो सब ये सब इसी अजीम मकसद के साथ आ जाते हैं, या कि वो सब बातें, वो सब काम इसी मकसद के सिलसिले की कड़ियों की हैसियत से हैं। और कोई बात, कोई कौल जिसको दीन में मकाम मिला है, इस मारिफत खुदा से बाहर नहीं है। ये एक उसूल है कि जिस तरह खुदाई वाहिद ने, यानी एक अकेले खुदा ने इस अजीम कायनात को, बल्कि दोनों जहां को वजूद दिया, पैदा किया, तो एक खुदा के अम्र फरमान से, एक कलिमाई कुन से, एक हुक्म से कितनी अजीम कायनात वजूद में आई और उसमें कितनी सारी चीजें हैं, लातादाद और बेशुमार चीजें। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जिस तरह ये सारी चीजें एक ही कलिमे से वजूद में आई थी, या कि इतनी सारी अजीम कायनात एक कलिमे से वजूद में आई थी, फिर जब खुदा चाहेगा तो उस वक्त उनके फरमाने के साथ साथ ये तमाम चीजें उसी कुन के लफ्ज में, उसी कुन के हुक्म में, उसी एक कलिमे के अंदर सब चीजें समो जाएंगी। इस सूरत हाल में, इस हकीकत में, इस अजीम वाकये में ये हिकमत है कि चीजें एक ही मकाम से पैदा हो जाती हैं, फिर एक ही मकाम में समो जाती हैं,
इसी तरह इंसान के सामने जो मारिफत खुदा का अजीम मकसद है, तो उसी मकसद में दीन दुनिया के सारे मकासद जमा होने में कोई शक नहीं।
इस मिसाल से पता चला
कि चीजें एक ही मरकज से, एक ही सरचश्मे से पैदा हो जाती हैं और आखिरकार ये सारी चीजें उसी असल में, उसी मरकज में जमा हो जाती हैं। मैं इस बयान में मारिफत खुदा के तहत सारे मकासिद के आने का जिक्र करता हूं। और दूसरी बात यह है कि इंसान का जो इरादा है वो किस तरफ मरकूज होना चाहिए, ये कि मोमिन जो दानिशमंद है वो सबसे आला चीज को सोचे, उसी की नियत करे, यानी खुदा की शिनाख्त की नियत करे और अपनी नियत को सबसे अजीम चीज की तरफ मुतवज्जो करे, तो फिर उसके लिए रास्ते में मुख्तलिफ मराहिल में जो चीजें मिलने की हैं वो खुद बखुद, जैसा कि मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि का इरशाद गिरामी है कि खुदा की इबादत ना तो जहन्नम के डर से होनी चाहिए ना बहिश्त की तमा से। इबादत में गुलामी का तसव्वुर हो तो कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन इससे बेहतर यह है कि हम दुस्ती का तसव्वुर रखें और खुदा की रजा को पेश नजर रखें, क्योंकि खुदा की रजा जो है सबसे बड़ी चीज है। रजा को कुरान की जबान में रिजवान कहा गया है। अब रिजवान के चंद मतालिब हैं, यानी चंद मानी है। एक तो रिजवान खुदा की खुशनुदी को, खुदा की रजा को कहा जाता है, और दूसरे इसके मानी हैं कि खुदावंद आलम ने अपने कुदरत से जन्नत का कोई मालिक पैदा किया जो कि वही अजीम फरिश्ता जन्नत की निगरानी करता है और उसको जन्नत का इख्तियार करता है। रिजवान के दूसरे मानी है। और तीसरे मानी ये है कि रिजवान अल्लाह की खुशनुदी है कि वो अपनी खुशनुदी से जन्नतियों को बहुत कुछ अनायत करेगा। और चौथे मानी है कि रिजवान एक दर्जा है जो जन्नत से भी बाल है। और दुनिया के अतबार से रिजवान के मानी है कि दुनिया के अंदर जो लोग खुदावंद की रजा को चाहते हुए निकी करते हैं, बदनिकी करते हैं, दीन की हिदायतों पर अमल करते हैं, तो वो खुदा की रजा को चाहते हैं। बहर सूरत और बहरहाल खुदा की रजा जो है वो सबसे ऊंची चीज है। तो खुदा की रजा के लिए और उसकी मारिफत के लिए मोमिन जो कुछ करे तो उसके लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जहन्नम के डर से, बहिश्त की तमा से और दुनिया की किसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए जो इबादत की जाती है वो नाजायज तो नहीं है, मगर उसका मकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत बुलंद नहीं है। खुदा का जो हकीकी दोस्त होता है वो बवक्त मुसीबत ये ख्याल नहीं करता है कि उस पर जुल्म ज्यादती हो रही है, बल्कि वो ये सोचता है कि जो सूरत हाल है या जो मुश्किल आन पड़ी है उसमें भी एक मसलहत है, उसमें भी एक हिकमत है। तो मोमिन का तस्वुर और मोमिन का नजरिया हमेशा यूं होता है। बहरहाल शिनाख्त खुदा और खुदा की रजा बहुत ही अजीम है। तो खुदा की शिनाख्त अजीम है और खुदा की शिनाख्त का आगाज इकरार से होता है, यानी खुदा की खुदाई के लिए एक मोमिन जब इकरार करता है, जब खुदा को मानता है, तो यही से मारिफत की बुनियाद पड़ती है और फिर मारिफत के मुख्तलिफ दर्जात मुरतब हो जाते हैं, यानी मारिफत के बहुत से दर्जात हैं, बहुत ऐसी सीढ़ियां हैं या زینے ہیں. کہ خداوند عالم نے قرآن مقدس جیسی آسمانی اور الہامی کتاب میں خود کو سیڑھیوں کا مالک قرار دیا ہے. یہ سیڑھیاں دنیا کی سیڑھیاں نہیں ہیں, یہ روحانیت کے مراتب ہیں. اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی, اس روحانیت کو, اس عظیم واقعے کو معراج اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ معراج سیڑھی کا نام ہے عربی میں. تو آن حضرت نے اپنے اس روحانی ارتقاء کو سیڑھی سے تشبیہ دی. اور سیڑھی کے متعلق آپ تو یہ جانتے ہیں کہ اس کے زینے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے جہاں معرفت ایک چڑی کی طرح ہے, تو اس میں مختلف مومنین مختلف سیڑھیوں پر کھڑے ہیں اور خدا کے حضور کی بلندی کی طرف چڑھ رہے ہیں. تو اس میں مراتب کی بات آ گئی, درجات کی بات آ گئی. اور اس سے بڑھ کر جہاں روح اور روحانیت کا مشاہدہ ہوتا ہے, وہاں عملی طور پر معرفت شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ یقین کے تین درجے جانتے ہیں کہ پہلے علم الیقین ہے, اور اس کے بعد عین الیقین, اور پھر آخر میں حق الیقین. یاد رہے کہ علم کے جو بڑے بڑے الفاظ ہیں یا دین کی جو بڑی بڑی اصطلاحیں ہیں, وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں. کہنا یوں ہے کہ کبھی تو معرفت کہا ہے, کبھی یقین کہا گیا ہے, کبھی اس کو علم کہا گیا ہے, کبھی ہدایت کے نام سے یاد کیا گیا ہے, اور کبھی اس کو روشنی کہا گیا ہے, تو کبھی اس کو سیڑھی سے تشبیہ دی گئی ہے, کبھی اس کو درجات کہا گیا ہے. تو ان تمام مطالب کی حقیقت ایک ہی ہے. چنانچہ اگر ہم یقین کے ان تین بڑے درجوں کو پھیلائیں, تو انہی درجات سے ایک بہت ہی بلند و بالا سیڑھی مرتب ہو جائے گی. اور اس لحاظ سے جو مومنین علم الیقین کے درجے پر ہیں, ان کے بھی جو ہیں انفرادی یا ذیلی مراتب مقرر ہوں گے. مثلاً کچھ مومنین ایسے ہیں کہ انہوں نے دیدہ دل سے حقیقتوں کا اور نور کا مشاہدہ نہیں کیا ہے, لیکن وہ علم الیقین رکھتے ہیں. تو اگر وہ لاکھ ہیں یا کروڑ ہیں, تب بھی ان کے مختلف درجات مرتب ہو سکتے ہیں. اسی حساب سے خداوند عالم نے فرمایا کہ روحوں کو اس کے حضور تک پہنچنے کے لیے 50,000 برس کا وقت چاہیے. آپ کو اس قرآن تصور سے تعجب بھی ہوگا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے اتنا لمبا عرصہ چاہیے جو 50,000 برس کا ہے. تعجب اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن یاد رہے کہ خداوند کی حکمت بہت ہی عجیب ہے, اور اس کی حکمت قدرت زبردست ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے صحیح ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک اور کوئی چیز ہو, وہ یہ کہ آج دنیا کے اندر کسی زمینی مسافت کا جو حساب ہے وہ مختلف معیاروں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے, پیدل جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, اور گھوڑے کی سواری کے لیے کتنا وقت چاہیے, موٹر سے جائیں تو, جہاز سے جائے تو, اور جہاز بھی. چنانچہ اگر کہ ایک روح, عظیم روح کو کے ساتھ خدا کے حضور تک پہنچنے کے لیے 50,000 برس کی ضرورت ہے, تو پھر بھی خداوند عالم کی قدرت میں, اس کی حکمت میں عجب نہیں ہے एक मोमिन बस एक ही जिंदगी में आए और अपनी उम्र के एक हिस्से में खुदा के हुजूर तक पहुंचे। इसके लिए मिसाल के तौर कुछ यूं होगा कि आपकी इबादत और मेहनत और मशक्कत कितनी है उसी से साल बनाए जाएंगे। यानी आप इबादत किस शान से करते हैं, किस तरह इबादत में डूब के खुदा को याद करते हैं, किस तरह आप पर इस्तग़राक का आलम गुजरता है यानी डूब जाने का, कैसी आप इस दिन की सारी करते हैं, किस तरह की रियाजारी करते हैं, किस तरह पिघल जाते हैं, उसके हिसाब से सालों का तयन होगा और फिर आपके घंटों को या मिनटों को सालों का महीनों का दर्जा दिया जाएगा और बहरहाल आप खुदा के हुजूर तक। और मारिफत का एक दर्जा हासिल होगा। लेकिन याद रहे कि खुदावंद आलम ने फरमाया है कि वमा कदरुल्लाह का कदर ही, खुदा की जो कदर होनी चाहिए वो कदर बंदू से नहीं हो सकी। और यही सबब है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अरफना का हक मारिफत, खुदावंदा तेरी मारिफत तेरी शिनाख्त तेरी पहचान का जो हक था वो हक हमसे अदा नहीं। यानी जैसा कि और जिस तरह की तेरी शिनाख्त होनी चाहिए थी वो हमसे नहीं। सरवरी अनबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां ये करार करते हैं तो वहां दूसरा कौन हो सकता है जो मारिफत का बहुत बड़ा दावा करे। ताहम ये शायद अदब है और बंदगी है, इबादत है और तालीम है दूसरों को सिखाने के लिए समझाने के लिए, तो खुदा की मारिफत से कोई नाउमीदी नहीं, कोई मायूसी नहीं। जो खुदा के सच्चे बंदे हैं वो मारिफत के एक आला मकाम को जरूर हासिल। और हाँ, जो बंदे दुनिया के अंदर इल्म उल यकीन के गजाओं में अपनी रूह की परवरिश करते रहेंगे तो उनके लिए परवरदिगार आलम ये मेहरबानी करेगा कि जब ऐसी रूहें दुनिया से गुजर जाएंगी तो उनको अपने दीन को अपने नज़रिए को आगे बढ़ाने और उसको तकवीत देने के सारे इम्कान जो हैं वो उनको जाहिर करेगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जो इल्म में पले हुए हैं जिनको इल्म से दिलचस्पी है तो जब ये दुनिया से गुजर चुके होंगे तो इन रूहों को फिशतगी की सिफात से मुतसिफ किया जाएगा और फिर इनके सामने लातादात रूहें होंगी और जिनको दीन सिखाना होगा, जिनको इल्म देना होगा और जिन पर हकायक जो हैं उनको जाहिर करना होगा। जिस तरह हमारे माजी के पीरों ने, बुजुर्गों ने, दाइयों ने काम किया और इस तरह मोमिनीन को आलमी रूहानियत में ये खिदमत सौंपी जाएगी कि वो बहुत सारी रूहों को तालीम दे। ये इसलिए कि खुदा ने सच्चे दीन को दूसरे मजाहिब पर, दूसरे अदियान पर गालिब करने का जो वादा फरमाया है उसके लिए दो सूरतें हैं। एक ये कि अपने वक्त आने पर दुनिया ही ने जो सच्चे दीन गालिब हो जाएगा। एक ये कि जब मोमिनीन आलमी आखिरत का मुशाहिदा कर रहे होंगे और जब इस दुनिया से वो चल बसे होंगे तो उस वक्त वो अपनी रूह की आंख से मुशाहिदा करेंगे कि किस तरह दुनिया वाले सब यानी सब रूहें इस दीन में दाखिल हो रही हैं। यहाँ पर आप एक सवाल करेंगे शायद, वो ये कि आपका पूछना शायद ये हो कि कभी कभार कुरान में अक्सर और कभी कभार बातों में ये भी कहा जाता है कि
میری نجات بہت تھوڑی اور بہت سی آیات سے اور بہت سی حدیث کی جاتی ہے، میری نجات کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بس آپ کا شاید یہ سوال اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں یا کہ دو انائیں ہیں، ان کے دو شعور ہیں، ایک دنیوی ہے اور ایک روحانی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس دنیوی شعور کو اس شعور کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا درمیان سے لنک جو ہے یا جو ربط ہے یا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کبھی مثال دی تھی کہ یہ کائنات بجائے خود ایک بولنے والی کتاب ہے، ایک زندہ کتاب ہے، اس کے اوراق جو ہے خود بخود کھلتے ہیں، جو خود بخود کتاب جو ہے وہ ہمارا سامنے ریڈ کرتی ہے. یہ کائنات نیچر جو ہمارا سامنے، تو قرآن کی مقدس آیات میں بھی یہ حکم ہے کہ ہم اس کائنات پر غور کریں، کیونکہ اس میں خدا کا قانون جو ہے کام کر رہا ہے، یا کہ خدا کا جو قانون ہے اس کا ظہور ہے اس کائنات کے اندر. جو کچھ قرآن میں سے ہم اخذ نہیں کر سکتے ہیں وہ اس کائنات کے اندر اوپن عمل میں، ایکشن میں. چنانچہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے کبھی بیان کی تھی، بلکہ شاید اکثر و بیشتر میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا کے اندر چھوٹے موٹے کچھ جانور ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں، جن کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں وہ دو طرح کی ہے، کہ وہ پہلے کیڑے ہیں پھر اس کے بعد پرندے بن جاتے ہیں. یہ بات بہت ہی عجیب ہے اور قابل غور ہے. وہ کہ کیڑا ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو حکمت ہے بڑی عظیم ہے. انسانوں کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ انسانوں کی زندگی بھی دوہری ہے، ایک روحانی زندگی ہے ایک جسمانی زندگی ہے. جسمانی زندگی کو ہم کیڑے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کیڑے کی زندگی کی طرح، اور کیڑا جہاں پروانہ بن جاتا ہے تو اس پروانے کی زندگی کو ہم روحانی زندگی سے تشبیہ دے سکتے ہیں، روحانی زندگی کی تشبیہ اس پروانے سے دے سکتے ہیں. چنانچہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جن کو معرفت نہیں ہے ان کے شعور کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ کیڑے کی زندگی کو تو سمجھتے ہیں لیکن پروانے کی زندگی تک وہ پہنچ نہیں سکتے. لیکن پروانہ بجائے خود ہے، وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے تو پروانہ جو ہے بجائے خود ہے، موجود ہے. چنانچہ مومنین کی بادشاہت ہوگی ان تمام روحوں پر جو پروانوں کی طرح، اور جو کیڑے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں. تو دونوں باتیں صحیح ہو گئی. ادھر اس اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کو نجات ملی، اور خدا نے جیسا وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارا جو دین ہے دنیا کے ادیان پر غالب آئے گا، یعنی اسلام جو سچا اسلام ہے، جو حقیقی اسلام ہے، وہ دنیا کے باطل اور غلط مذاہب پر غالب آئے گا. یہ فرمایا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہوں گے اور صرف ایک ہی دین ہوگا اور اسی دین کے قائم ہونے کو ہم سمجھیں گے کہ یہ دین جو ہے دنیا کے مذاہب پر غالب آیا، یہ بات نہیں ہے. اس کا اشارہ لوگوں کی طرف ہے، لوگوں کی موجودگی کی طرف اس کا اشارہ ہے. تو موجودگی کسی صورت میں ضروری ہوتی ہے، اور یہ صورت روحانیت میں ہو. اس وقت جو مومنین ہیں اور خصوصاً جن کا واسطہ علم سے، تعلیم سے، دین شناسی سے ہے، خدا شناسی سے ہے اور روح شناسی سے ہے، تو وہ مومنین عالمی آخرت میں، عالمی ارواح میں، عالمی بالا میں یہی کام کاج کریں گے. کون سا کام؟ کہ روحوں کو اس کا، تاکہ ان کی بادشاہی اس عالمی روحانیت میں قائم ہو جائے. اس میں اور مزید تشریح کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے دوسرے لیکچر یا کتابیں آپ کے لیے امید و معاون ثابت ہو سکتی ہیں. ہماری روکی کتاب میں یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر لاتعداد روحیں ہیں، یا ایک ہی روح کے بے شمار ذرات ہیں. تو اتنے سارے ذرات کیوں ہیں؟ اتنے سارے ذرات اس لیے ہیں कि कल को यही जर्रा लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। इन्हीं जर्रात को आप समझे कि ये परवाने हैं। कौन से परवाने? दुनिया के लोग जो राह रास्त से हटकर हैं, जिनके मुतालिक अभी अभी हमने कहा था कि उनकी जिंदगी दूरी है, एक जिंदगी यहाँ है और एक जिंदगी उनकी रूहानियत में है। और ये भी कहा गया था कि इन दोनों जिंदगियों के दरमियान मारिफत के जरिए से जब लिंक नहीं हो तो इनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि आखरत तो एक शुऊर है, एक शुऊर की सूरत में, एक अना की सूरत में, एक खुदी है, एक जिंदगी है। अगर अभी रूह को पहचानते हैं तो हमको खुदी मिलेगी, हम वहां जिंदा हो जाएंगे। और अगर हम मारिफत के मकाम को नहीं पहुंचते हैं तो हम जो है जहालत और नादानी और फरामोशी की मौत मर जाए और वही जहन्नम। लिहाजा लोगों की जो दूसरी जिंदगी है उसकी नुमाइंदगी आपके अंदर जो बेशुमार जर्रात हैं वो ही करेंगे। वो बेशुमार जर्रात इसलिए हैं कि वो आप की सल्तनत को कायम करने और चलाने के लिए अवाम उन्नास की हैसियत से, और दुनिया में जो अवाम उन्नास हैं और आखिरत में जो लोग हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क पाया जाता है। दुनिया आखिरत दुनिया है और आखिरत जो है वो अवन का आलम है। और जब सच्चा दीन दूसरे अज्ञान पर गालिब आ जाएगा तो वो तमाम रूहें जो हैं सच्चे दीन को कबूल करेंगी और इनको सिखाने के साथ साथ आपको चार हुदूद से ताइद मिलेगी, अक्ल कुल, नफ्स कुल, नातिक असास से। उस वक्त आपको रूहानी मदद मिलेगी और आप उनको इल्मी तौर पर तैयार करेंगे। इन चार हुदूद को से जो आपको रूहानी ताइद मिलेगी उसका जिक्र कुरान में मौजूद है, और वो इस तरह से है कि अक्ल कुल से जो कुछ कुव्वत आप पर नाजिल होती है उसका नाम पानी दिया गया है, और नफ्स कुल की कुव्वतों का नाम जो है दूध है, और नातिक से जो कुछ आपको आलम रूहानियत में हासिल होगा उसको शराब कहा गया है, और असास से जो आपको वहां नेमत मिलेगी उसको शहद। तो यही बहिश्त की चार नहरें हैं। मगर दुनिया का जो पानी है तो वो दुनिया का पानी है, लेकिन बहिश्त का जो पानी है उसकी तारीफ खुदा ने की। देखें इस बहिश्त के पानी के मेयार को, समझें कि उसकी तारीफ खुदा ने की। दुनिया में अगर कोई बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, कोई शहंशाह किसी चीज की तारीफ करता है तो इसे क्या आप समझेंगे? अगर एक गरीब किसी चीज की तारीफ करता है तो उस चीज का मेयार बहुत ही पस्त होगा, और अगर एक बादशाह किसी चीज की तारीफ करता है तो जाहिर है कि उस चीज का मेयार बहुत ही बुलंद होगा। चुनांचे अगर खुदावंद आलम बहिश्त के पानी की तारीफ करता है तो वो पानी दुनिया का पानी नहीं होगा। पानी दुनिया का हो जो बहिश्त की नहर में चलता है और खुदा उसकी तारीफ करे, तो ये बात बहुत ही अजीब होगी कि खुदा ने इस आम पानी को इतना दर्जा दिया और इसकी इतनी तारीफ की, तो इसमें कोई मंतिक नहीं बनेगी। लिहाजा ये बात सही है कि अक्ल कुल की ताईद को पानी कहा गया है, इसलिए कि जिस तरह दुनिया के पानी में जो है वो दुनिया की माजी जिंदगी है और दुनिया की आबादी पानी से होती है, हर तरह की नेमत जो है पानी से पैदा हो जाती है, इसी तरह बहिश्त तो सबसे पहले पानी का जिक्र आता है, पानी की तारीफ आती है, इसलिए कि अक्ल कुल का दर्जा हुदूद में सबसे बुलंद वाला है। और बहिश्त के अंदर जितनी आबादी है वो अक्ल कुल के कुव्वतों से। फिर उसके बाद दूध का जिक्र आता है, दूध तो इशारा है تخلیق کی طرف کہ جس طرح دنیا کے اندر دودھ سے اولاد کی پرورش ہوتی ہے اور دودھ تولید کی نسل کے بڑھنے اور ان کی تربیت کی ایک علامت ہے, اسی طرح جنت کے اندر جس قسم کا دودھ ہے وہ دنیا کے دودھ سے بہت ہی مختلف ہے اور وہ تخلیق ہے جو نفس کل کا مقام ہے. تو اس کے بعد شراب کا ذکر آتا ہے, وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں بہت پاک اور پاکیزہ ہے, اس کو شراب طہور بھی کہا گیا ہے, اور وہ شراب ایسی نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کی شراب کے پینے سے جو عقل ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور جو دماغ ہے وہ معطل ہو جاتا ہے, لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہے. یعنی کہ یہ اشارہ ہے کہ جس طرح ناطق کو وحی نزل ہوتی تھی اور روحانی قوتوں کو پاتے تھے, اسی طرح بہشت کے اندر مومنین کو وہ عالم ہوگا, وہ کیفیت گزرے گی. تو اس کو شراب سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کے بعد اساس یعنی مولا علی کے درجے کا نام ہے, تو شہد کی نہر ہیں یعنی آپ سے مومنین کے لیے تاویل حاصل ہوگی, اور شہد کس قدر شیرین ہے, کتنا میٹھا ہے, اور اس میں دوا کا عنصر بھی ہے کہ خود قرآن نے فرمایا ہے کہ فی ہی شفاء للناس, اس میں عوام کے لیے جو ہے وہ شفا ہے. تو جو روحیں بیمار ہیں ان کا علاج اس روحانی شہد سے ہوگا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی, کہ جو تاویل ہے وہ بہت صاف ہے اور بہت ہی شیرین ہے. تو کہنا یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ دوسرے ادیان پر غالب آئے گا. تو میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی دو صورتیں ہیں, ایک یہ کہ اس کے لیے دنیا میں ایک مقرر وقت ہے, ایک یہ کہ روحانیت میں وہ ہمیشہ غالب ہے. قرآن میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جب خدا کی مدد اور نصرت آئی تو آپ دیکھتے تھے کہ دنیا بھر کے لوگ جو ہیں فوج فوج ہو کے دین خدا میں داخل ہو جاتے. تو اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آن حضرت کو عرب کے ملک میں فتوحات ہوئی تھی اور آیت کی جو حکمت یا تاویل ہے ان فتوحات تک محدود ہے, یہ بات نہیں ہے. آن حضرت پر جو روحانیت کے واقعات گزرتے تھے اس میں ہوا یہ تھا کہ حضور نے دنیا والوں کو روحانی مشاہدے سے دیکھا کہ سب لوگ جو ہیں ذرات کی شکل میں دین اسلام میں داخل ہو چکے. تو حضور نے عالم آخرت کو دیکھا اور اس واقعے کو دیکھا جو جس کو واقعہ قیامت کہا جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اس میں ماضی حال اور مستقبل ایک ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہزار برس یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں جو کچھ پیش آنے والا تھا اس کو رسول نے اپنے مشاہدے میں اس وقت دیکھا. یعنی جو روحانیت میں سب لوگ عالمی آخرت میں جو سب لوگ دین خدا میں داخل ہو جاتے ہیں اس کو دیکھا. ایسا نہیں کہ حضور کو اتنی فتح ہوئی تھی نبوت کے زمانے میں کہ جس کو خدا کہیں کہ سب لوگ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ایک روحانی واقعے کی طرف اشارہ ہے. جو عام طور پر ہوتا رہتا ہے. لہذا یعنی آپ یہ بات بھی جان چکے کہ روحانیت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اس میں ماضی، حال اور مستقبل ایک ہو جاتا ہے. مولانا روم نے اپنی مسند کے اندر اسی مقام پر یہ کہا ہے کہ خدا کے وہاں ماضی بھی نہیں ہے اور مستقبل بھی نہیں، یعنی پاسٹ بھی نہیں ہے اور فیوچر بھی نہیں، سب حال ہی حال ہے. اور صوفی لوگ کچھ حقیقتوں کو پاتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے بیان کرتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ دیکھیں ماضی کس کا ہوتا ہے، پاسٹ کس کا ہوتا ہے، جس کی عمر کے لمحات یا عمر کے سال گزر چکے ہوتے ہیں. اور فیوچر کس کا ہوتا ہے، اس کا فیوچر ہوتا ہے جس کے وہ سال ابھی نہیں آئے ہیں، وہ نئے واقعات جو ہیں سر سے نہیں گزرے. ماضی کہتے ہیں کچھ واقعات ہم سے گزر کے غائب ہونے کو، اور مستقبل اس کو کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ واقعات ہمارے مشاہدے میں نہیں آئے. لیکن خدا جو بسیط اور محیط ہے، خدا ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو تمام ممکنات پر محیط ہے، حاوی ہے، تو اس کے لیے کیسے ماضی ہو اور کیسے مستقبل ہو. تو یہ خدا کے بارے میں بات ہوئی. اب اگر کوئی مومن اسی دنیا میں رہتے ہوئے یا مر چکنے کے بعد عالم روحانیت میں جا چکا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے، وہ تو خدا کے عالم میں ہوتا ہے، وہ تو خدا کے حضور میں ہوتا ہے، وہ تو خدا کے نزدیک ہوتا ہے، تو وہاں پر ماضی، مستقبل اور حال سب چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، ایک ہی ہو جاتی. اسی کو ازل کہا گیا اور اسی کو ابد کہا گیا. بعض اب ہم ازل کو کچھ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ماضی ہے کہ جس سے کا کوئی سرا نہیں ملتا، ایسا نہیں. اور ابد کے متعلق ہم کچھ اس طرح سوچتے ہیں کہ ابد لا انتہا وقت کا وہ سرا ہے جس تک ہم ابھی اپروچ نہیں کر پائیں، اس طرح ہم سوچتے ہیں. یہ تو عام سوچ ہے، یہ خاص سوچ نہیں ہے. تو کیا یعنی خدا کے حضور میں وقت، زمانہ کوئی ایسی چیز کی طرح ہے جو بہت ہی لمبی ہونے کی وجہ سے اس کے سرے پر کوئی خدا کا کنٹرول نہیں؟ تو پھر کس سینس میں خدا کو ہم محیط اور بسیط کہیں گے؟ حالانکہ خدا کے لیے محیط اور بسیط بھی ایک بہت معمولی صفت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خدا نے جو اعلیٰ مخلوق بنائی ہے، وہی مخلوق جیسے عقل ہے، نفس ہیں یا حدود ہیں، وہی محیط ہیں. اور بعد خدا اپنے حدود کی صفات کو اپنا لیتا ہے، حالانکہ وہ ان حدود سے بالاتر کرے. لیکن لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ تو لوگوں کے پاس کوئی مثال ہے نہیں. لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا کی کسی چیز سے مثال دے، جو عالم آخرت کی حقیقتیں ہی ان کے لیے بہت کچھ کر کے ان کی مثال پیش کی جا سکتی ہے. تو خدا کے حضور میں نہ تو ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، بلکہ حال ہی حال ہے. اور اسی طرح خدا کے حضور میں جو ازل ہیں اور جو ابد ہیں وہ یکجا ہیں، ایک مقام پر. ایسے میں مومنین اس کیفیت کا مشاہدہ کریں گے جس میں کہ اسلام دین جو ہے باقی ادیان پر غالب آنے والا ہے، اور جیسے ہی روحانیت میں جائیں گے تو اس مقام پر یعنی ان تمام واقعات کو، ان حالات کو وہ دیکھ پائیں. بات معرفت سے نکلی تھی اور چلتے چلتے ہم آگے آئیں، اور ٹھیک ہے اس مضمون کے رب سے اور موضوع سے یہ باتیں باہر نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے اور بہت عظیم و اعلیٰ بھی ہے. لہذا معرفت جو ہیں مشاہدات کا نام ہے، اور معرفت جیسے کہ آپ کتابوں سے جانتے ہیں کہ معرفت اسلام کے اندر معرفت سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں. اس لیے کہ معرفت جو ہے حقیقت کو کور کرتی ہے، اور حقیقت جو ہے طریقت کو کور کرتی ہے،
वो तरीकत जो है शरीयत को कवर करती है। एक वेस्टर्न स्कॉलर था कभी, यहाँ वो किसी महफिल में, वो इस्लामियात का माहिर था उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक जिसमें कि वो काम करता। उसने कुछ शरीयत पर लेक्चर दिया या इस्लाम पर लेक्चर दिया, और इस सिलसिले में उसने शरीयत को मुकम्मल कानून करा दिया। कुछ हजरात के नजदीक ये बात सही हो सकती है, लेकिन जो दानिशमंद हैं, जो अहले हकीकत हैं, उनके नजदीक जो है वो शरीयत कामिल कानून नहीं हो सकती है। कि कुरान में जो कुछ फरमाया गया है वो हर मेयार से सही है, और अगर हम मानते हैं कि कुरान में जो कुछ इरशाद हुआ है वो हर मेयार से और हर कसौटी से सही है, तो लफ्ज शरीयत की रूट को लीजिए कि इसकी रूट क्या है, इसका मसदर क्या है। ये देखें, ये शीन रे आई इसकी रूट, इसकी रूट तीन हरफों पर है, लेकिन इसी रूट से एक शाख है और वो शुरू है, शीन रे आई वाव आई। और आप यकीन करेंगे कि एक रूट से जितने अल्फाज बनते हैं तो उन लफ्जों के आपस में रिश्ता होता है, मानवीय रिश्ता होता है। बस शरीयत जो लफ्ज है इसका रिश्ता है शुरू के साथ। और वैसे भी सूफियों ने जिस तरह इन चार मंजिलों की वजाहत की है उससे भी ये पता चलता है कि शरीयत शुरू का नाम है और तरीकत रास्ते को इख्तियार करने का नाम है। अभी शरीयत रास्ता भी नहीं है, वो इब्तिदाई किस्म की तैयारी है, वो शुरू की नौयत की चीज है, और हकीकत इससे आगे है, और मारिफत जो है वो अनजाने का है। इसके अलावा हदीसों को छोड़ के कुरान ही में आपको एक आयत मिलेगी और उसमें शिरअतन व मिनहाजा कहा गया है, वजअलना लिकुल्लि शिरअतन व मिनहाजा, और हमने हर एक को एक शरीयत और एक तरीकत बनाया है। यानी मतलब इसका यह हुआ कि आज जिस तरीकत का तस्करा चलता है वो तरीकत आज से नहीं है, ये जमाने आदम से, यानी पेशरफ्त और तरक्की व इर्तिका जो है यानी हर दिन में रहा है, हर पैगंबर के जमाने में ये चीज रही है कि पहले तो शरीयत होती है उसके बाद तरीकत। अब अगर इतना कुछ कुरान में है कि शरीयत के अलावा भी कोई चीज है तो हमारे लिए और लोगों को समझाने के लिए काफी है, और हो सकता है कि किसी और आयत में जो है तीसरी मंजिल का भी जिक्र हो और चौथी मंजिल का भी जिक्र हो। हालांकि लोग शरीयत को कानूनी कुल मानते हैं और सब कुछ मानते हैं। आपको ये जो मैंने कहा ये तर्जुमे में मैं आपको बताऊंगा कि शिरअतन व मिनहाजा में एक मुतर्जुम ने इस तरह से तर्जुमा किया है कि शरीयत और तरीका, और उसका नाम लेंगे, ये एक सुन्नी आलिम गुजरे हैं अशरफ अली थानवी, उसके तर्जुमे को आप लें, इंडेक्स से नहज को लें, नहज को लें, नून छोटी है और जीन, तो इंडेक्स आपको वो आयत जो है बताएगा। और देखें नहज जो है तरीके को कहा जाता है, रस्ते को कहा जाता है, और मौला अली की एक अजीम किताब का नाम जो है नहजुल बलागा है, इन रस्ते के नाम से, रस्ते के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो मिनहाज इसी से मिनहाज है। कहना यूं है कि मारिफत जो है वो इंतहाई अजीम लफ्ज है, और मारिफत को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर ले, मारिफत नहीं कहा जाता है मगर मुशाहिदात के नतीजे को। अगर इस मारिफत को दुनियावी मिसाल में लें और इसको पहचान, क्योंकि इस का लिटरल तर्जुमा जो होता है पहचान होता है। तो आप जिन चीजों को नहीं पहचानते हैं और जिस शख्स को आप नहीं पहचानते हैं उसके मतलब आप पहचान का जो लफ्ज है उसको यूज नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि मैं उसको पहचानता हूं, तो इसके ये मानी होंगे कि आपने उसको अच्छी तरह से देखा वाला है। और यहाँ जो सेंस है या जो इस्तिलाह है वो कुछ इस तरह से है कि दीन की आला हकीकतों को क्या बल्कि खुदा के बेदून को और बल्कि खुदा को देखने, खुदा के दीदार करने और रूहानियत में उसको पहचानने के मानी में मारिफत है। ये सवाल अलग है कि खुदा का दीदार किस तरह होता है, या तो वो नुमाइंदगी की सूरत में होता है या खुदा का कोई अपना रूप है, या ये कि हमारी रूह जो है उसमें ये सलाहियत है कि रूह जो है वो खुदा का रूप धारती है। अगर खुदा ने रूह को इन सलाहियतों के साथ बनाई है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसकी तारीफ जो है वो खुदा को पहुंचती है। तो खुदा ने एक रूह बनाई, ऐसी रूह बनाई और उसमें इस कदर सलाहियतें मौजूद है, उसमें इस कदर इम्कानियतें हैं कि वो यानी अपने वक्त पर खुदा का रूप धार सकती है, या यूं कहना चाहिए कि खुदा उसी रूह के रूप में जो है रूह फरमा होता है, दिलवगर होता है, या ये कि इंसानी कामिल और इमाम है वो खुदा का दीदार है। ये बेस अलग है और ऐसा भी नहीं है कि हम इस मसले को टालना चाहते हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि फिल वक्त यानी मुशाहिदे की बात चल रही है। और ये मैं बतला रहा हूं कि मारिफत नाम है मुशाहिदात के नतीजे का यानी शिनाख्त। आप इस लफ्ज को अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि बार दफा हमारी जो बातें जो है वो लेसन की तरह चलती हैं और बड़ी जिम्मेदारी से बात की जाती है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप भी जिम्मेदारी से सुन लेते हैं ताकि हर बात जो है ज़हन-नशीन हो जाए, ताकि बात जो है पक्की हो जाए और वक्त गुजारने, वक्त टालने और शुगल को मुकम्मल करने की महसूस होती नहीं है। इसलिए मुशाहिदात की बात है और कई बार हम कह चुके हैं, लिख भी चुके हैं कि मारिफत सबसे बड़ा लफ्ज है और सबसे बड़ी इस्तिलाह है, इसमें सब बातें आती हैं। अब इस मकाम पर इस मतलब को भी मैं दोहराना चाहता हूं कि बाद लोग ख्याल करते हैं कि चलो जी अदल को अवध को किसने पाया है और लोह कुर्सी को किसने देखा है, लोह कलम को, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको जानने के लिए कोई रास्ता नहीं। लेकिन ऐसे लोग जबानी तौर पर मारिफत खुदा का इकरार करते हैं तो उसमें ताजुब होता है। ताजुब इस माना में होता है कि खुदा ने अपनी मारिफत को तो मुमकिन बना दिया और इसके अलावा बहुत सारे वेद ऐसे रखे कि इनके जानने के लिए कोई रास्ता नहीं। अगर ये बात हो उसको यानी कबूल किया जाए तो बड़ा ताजुब बात नहीं। खुदा से लड़कर कोई शय अजीम नहीं और अल्लाह अकबर हर लिहाज से खुदा की शान है कि वो हर तरह से अजीम है और सबसे बड़ा है, हर वेद से उसका वेद बड़ा है, हर हस्ती से उसकी हस्ती बड़ी है, हर शान से उसकी शान अजीम है और हर मर्तबे से उसका मर्तबा अजीम है। इसलिए अल्लाह अकबर कहा गया और उसकी तालीम दी गई। तो फिर खुदा के वेद से बढ़कर और कौन सा वेद हो सकता है? तो मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि मारिफत में सब कुछ समो जाती है और जहां मारिफत है वहां पर सब कुछ है और सब कुछ है और कोई शय बाकी नहीं है। एक चीज में ये बताना चाहूंगा कि बेनसर खसराव ने रहाइश गुशाइश के नाम से एक रिसाले के अंदर जहां उसने अमर का जिक्र किया है, कहा है कि अगर खुदा अपनी रहमत को कुदरत को जाहिर करने के लिए बहुत सी चीजें बनाता तो फिर उसकी तवानाई में उसके कुदरत में कमजोरी आती। क्या हम इसको बावर नहीं करेंगे कि खुदा के दूर में जिस तरह खुदा एक है उस तरह उसके सामने उसकी एक कुदरत है, वो आमर है, कलिमा कुन है। उसी कलिमा कुन में सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, और कोई शेय इस कलिमा कुन से बाहर नहीं। जब हम गौर करते हैं कि खुदा ने जब चाहा तो कुन फरमाया, और कुन फरमाने की तशरी अलग है, यदि आप सवाल करें तो कुन फरमाने के साथ साथ ये जो कायनात है वजूद में है, इतनी सारी कायनात। ये तो मादियत की बात हो गई, मादियत में तो ये होना चाहिए, लेकिन रूहानियत में जहां मकान नहीं है, जहां मादा नहीं है, मैटर नहीं है, तो उस एक चीज को एक्सपांड करने की क्या जरूरत है? क्या खुदा की सबसे बड़ी कुदरत यह न होती कि तमाम चीजें जो है यकजा करें और एक ही चीज में तमाम मकासिद को जो है समोए? तो यही सही है। और फिर नसर खसराओ की वजाहत नहाई गुशाइश में इस तरह है। इसके मुताबिक मैं आपको एक आयत की तरफ ले जाता हूँ, वो ये कि जन्नत की डिफिनेशन ये की गई है कि उसमें मोमिनीन जो कुछ भी चाहेंगे वो मुहैया हो जाएंगे। तो चाहेंगे कि डिफिनेशन जो है वो कुन के साथ यानी कि इसकी व्यवस्था वापस्तगी हो जाती है, क्योंकि जन्नत में मोमिनीन का जो मंशा है वो मंशा इलाही के साथ एक हो जाएगा, या मोमिनीन का जो इरादा है उनके इरादे के साथ एक हो जाएगा। और खुदा का इरादा जो है यानी कुन फरमाना है, खुदा के इरादे ने, खुदा ने लफ्जी तौर पर नहीं फरमाया कि हो जा, खुदा ने इरादा किया तो हो गया। तो खुदा के इरादे में सब कुछ है। मौला सुल्तान ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है, खुदा के इरादे। तर्जुमा करने वालों ने शायद ख्याल कहा हो, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी दानिश में वहां इरादे का जिक्र है। हो सकता है कि कभी इरादे को उन्होंने ख्याल का कहा, यह भी मुमकिन है कि यानी उसमें ख्याल का जिक्र। बहरहाल मकसूद इरादा है, और इमाम ने फरमाया कि खुदा इरादे से काम करता है। तो जहां बिहिश्त में मोमिनीन खुदा में फना हो जाएंगे, और फना का क्या मतलब, अपने तसरुफात से दस्तबरदार हो जाना अमलन, ये फना है। क्या मतलब, हमारे अंदर जो ख्वाहिशात काम करती हैं वो गलत काम करती हैं, इन ख्वाहिशात पर खुदा का कंट्रोल हो, तसरुफ मानी कंट्रोल, वो अपने कब्जे कुदरत में ये सब चीज ले लें और हम इस अहल हो जाएं, इस काबिल हो जाएं, तो ये फना है। जिस तरह एक हदीस के अंदर है कि जायद तो एक्स्ट्रा इबादत में मोमिन इस कदर कोशिश रहता है कि एक दिन में उसकी आंख बन जाता हूं तो वो मुझसे देखता है, कान बन जाता हूं मुझसे सुनता है, जबान बन जाता हूं मुझसे बोलता है, और हाथ बन जाता हूं मुझसे पकड़ता है, पांव बन जाता हूं तो मुझसे। इसके ये मानी है कि खुदा जो है यानी हमारे हमारे अंदर जो कुवतें उन पर तसरुफ करता है, तसरुफ मानी इस्तेमाल करता है एक मकाम पर। अब नहीं, उस वक्त हमारा इरादा जो है वो खुदा के इरादे में फना हो चुका होता है, है? तो उस वक्त खुदा चाहता है या हम चाहते हैं, हमारा जो मंशा है, हमें जो चाहना चाहिए वो खुदा चाहता है। क्या ये अच्छा नहीं है कि हमारी जगह पर हमारी खातिर खुदा चाहे? क्योंकि हम अगर हमारी चाहत बाकी और बरकरार रही तो एक तो ये इसमें नुकसान होगा कि हमारा चाहना जो है महदूद हो जाएगा, कि खुदा की बादशाही में क्या किया मुमकिन है उसको नहीं पाएंगे। और अगर हमारी अना अलग रही, हमारा इरादा खुदा के इरादे में फना नहीं हुआ तो हम गलत भी सोच सकते हैं। इसलिए क्या ही अच्छा है कि हमारा इरादा वहां जो है खुदा के इरादे में फना हो चुका होगा, और न मालूम उस वक्त हमारी खुद ही कैसी होगी, इसके लिए अलग क्या नहीं बात करेंगे। बहरहाल खुदा जब चाहेगा तो खुदा का चाहना कौन फरमाना होगा, है? और कौन फरमाने में इतना पावर है कि उससे एक यानी पूरी कायनात जन्म पाती है। तो उस वक्त यानी हमारे सामने हर जिलवा होगा, हर चीज होगी, हर वाकया होगा और हर नमत होगी। अब यहाँ ठहर के एक यानी कि मफरूजा पेश कर, ख्याल में भी पहले कुछ इस तरह से था कि बहिश्त एक ओपन जगह है और हर चीज तैयार है, है? तो बहुत वसी जहान है और उसमें हर किस्म की नियमतें सजी हुई है, दरख्त तो है लेकिन इससे जरा फर्क है। या इसको यूं सवाल में डालें कि बिहिश्त क्या, यानी कि जुहरात और मुख्तलिफ जुनून की शक्ल में सामने आएगी, या कि ओपन बिल्कुल बेजान और पड़ी पड़ी मरी हुई चीज की तरह। बिहिश्त तो जिस तरह खुदा के जुलूम का तस्वर है, तो यानी हर आन में और हर लाजे में जो हम चाहेंगे उसी जिलवे में बिहिश्त सामने होगा। आपने समझा बिहिश्त की यह सूरत है। और अगर बिहिश्त पड़ी पड़ी और बेहस हरकत और खामोश चीज होगी तो हम उसको मुर्दा ख्याल करेंगे। इस तरह दुनिया की चीज जो है, जो बनाई है, जिस तरह बनाई है, इस तरह पड़ी है, उसकी रंगत में, उसकी शक्ल में, उसकी बू में और उसकी चीज में फर्क नहीं है। और आस्ता आस्ता कुछ वक्त गुजरने के बाद उसमें तब्दीली आती है। ये तो एक किस्म की मुर्दगी हो गई। बेहिश्त ऐसी नहीं है, वो मुख्तलिफ जिल्मों की सूरत में है। यानी हम जैसे चाहेंगे वही चीज हमारे सामने। और आयात का इशारा इस किस्म की बिहिश्त की तरफ है, वो मरी पड़ी बिहिश्त की तरफ नहीं है। हमारे हमारे मर्तबे के मुताबिक, हमारी चाहत के मुताबिक, या खुदा जो हमारी जगह पर चाहेगा उसके मुताबिक हमारे यानी सामने गुनागुन जिलवे होंगे। हम जिस जिलवे को चाहते हैं, अजल के किसी जिलवे को चाहते हैं, यानी अवध के किसी जिलवे को चाहते हैं, जमाने आदम के वाकत को चाहते हैं, मूसा के वाकयात को चाहते हैं, इब्राहिम के जमाने को चाहते हैं, ईसा के मौजज़ात को चाहते हैं, रूहानियत की किसी चीज को चाहते हैं, तख्लीक के किसी बेद को चाहते हैं, और जो चाहेंगे वही वाकया, वही चीज, वही सूरत हमारे सामने, वही रोशनी, वही रंग हमारे सामने होगा। ऐसा नहीं कि वो मादी चीज की तरह हो। और ये ज़ुहरात जो है इरादा इलाही से वाबस्ता है। और इसका जिक्र कलिमा कुन में है, तो कलिमा कुन में ये सब चीजें हैं। और इस माना में जैसे अक्सरों ने इशारा फरमाया है कि खुदा की हिकमत, सबसे बड़ी कुदरत ये है कि उसने एक ही चीज के अंदर सारी चीजें जो हैं वो समझ ली। और मिसाल के तौर पर हमें समझना चाहिए कि खुदा ने अगर इस कायनात को कुन से पैदा किया है तो इस कुन के अंदर इम्कानी तौर पर ये जो कायनात है ये समझी हुई थी। माँ बाप से कोई बच्चा, कोई औलाद पैदा होती है तो इम्कानी तौर पर ये औलाद उनमें मौजूद होता है। दरख्त के किसी बीज से एक अजीम दरख्त पैदा होता है तो एक तरह से बाहर की कुव्वत जो है उस बीज के अंदर इतना अजीम दरख्त समोया हुआ होता है। इस तरह कलिमा कुन में तमाम चीजें समोई हुई है। इस तरह हमने कभी बताया था कि इसमें आजम में ये सारा कुरान इन तमाम आयातों आयात के साथ समाया हुआ था। और इसी इसमें आजम से कुरान का एक जुहूर हुआ और उस जुहूर की एक मादी शक्ल और मादी सूरत दी गई। तो मादी चीज जो होती है तो इसी तरह खामोश होती है और पड़ी रहती है, लेकिन रूहानी चीज जो है उसके जिलवे जो है यानी बार बार उसके जिलवे बदलते रहते हैं। और दिल की कैफियत के मुताबिक और चाहत के मुताबिक और मसलहत के मुताबिक रूह के जो जिलवे हैं, रूहानियत के जो जिलवे हैं, बेहिश्त के जो जिलवे हैं, वो हर आन बदलते रहते हैं। अब मैं यहाँ रुकूंगा और अगर इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो किया जा सकता है।